मैं टाइपराइटर के ज़माने वाला था और लोग कंप्यूटर पर पहुंच गए थे। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, कहां पे डालनी है, कंप्यूटर कैसे चालू करना है, कुछ मुझे पता नहीं था।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द जोश टॉक्स पॉडकास्ट पर, जहां हम भारत के कोने कोने से आए हुए प्रेरणादायक लोगों की कहानियां सुनेंगे। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धांत नाग और आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के जाने माने नीलेश शाह से, जो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द जोश टॉक्स पॉडकास्ट पर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और स्टॉक मार्केट में आपकी एंट्री कैसे हुई?
सो मैं बम्बई में ही पैदा हुआ। बम्बई मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। बचपन में आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी यंग एज, तो मैं फ्रीशिप पे स्कॉलरशिप लेके पढ़ा। पढ़ने में बहुत तेज था और कोई ऑप्शन भी नहीं था पढ़ाई के सिवा, सो एक एक करके मैं आगे आता गया। आई डिड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सीए करते समय स्टॉक मार्केट के प्रति लगाव हो गया। उस समय लगता था कि पैसे बनाना बहुत ईजी है, सुबह माल खरीदो शाम को डबल हो जाएगा। बट अगर पैसे बनाना इतना ईजी होता तो सब लोग करोड़पति बन जाते। 90 के दशक में जब मैंने अपना पहला निवेश का जर्नी चालू किया, तब मार्केट में तेजी थी और तेजी के बाद मंदी आती ही है, तो सारे पैसे डूब गए और बहुत अच्छा अनुभव मिला। शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि उन्होंने बहुत छोटे से पैसे पे इतना बड़ा अनुभव दे दिया और वहीं से निवेश की जर्नी चालू हुई।
स्टॉक मार्केट में एक बड़ा लॉस देखने के बाद आपके पहले जॉब का अनुभव कैसा रहा? इन तमाम रोल के बाद जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पहुंचे तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
सो मैं सीए में गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मुझे सामने से कंपनियों ने ऑफर भेजे। लार्सन एंड टुब्रो करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे मुझे जॉब की ऑफर मिली थी। और जब मैं अपॉइंटमेंट लेटर साइन कर रहा था, तब वहाँ पे एक शुभचिंतक मिल गए जिन्होंने कहा कि फाइनेंस इंडस्ट्री में जाके अपनी तकदीर ट्राई करो, और मैं L&T की जगह पे ICICI पहुँच गया। CA गोल्ड मेडलिस्ट था, ICICI में गया तो थोड़े आसमान पे उड़ रहे थे। वहाँ पे जाके देखा कि मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा हम्बल लोग थे, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक रिलेशनशिप बन गया। वहाँ से लोगों से सीखा मार्केट कैसे चलता है, एंड फिर धीरे 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 करके ICICI से टेम्पल्टन पहुँचा, टेम्पल्टन से वापस ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड आया, वहाँ से एक्सिस बैंक और वहाँ से कोटक। तो ऑर्गेनाइजेशन बदलते रहे बट मार्केट से रिश्ता कायम रहा। अगेन एक सेक्रेटरी थी सपना करके, बहुत अच्छी थी, उसे सीखना चालू किया। वो गुस्सा बहुत करती थी जब मैं गलती करता था, बट हमेशा सिखाती रही। तो धीरे धीरे कंप्यूटर कैसे चलता है वो सीख लिया। वहाँ से आगे बढ़े, मार्केट में आए तो नुकसान किया था और बहुत बुरा लगा कि इतना सारा पैसा उड़ गया। एंड फिर अगेन ठान ली कि नहीं, मार्केट में तो पैसा बनाना ही है, तो निवेश किस तरह होता है वो सीखना चालू किया। 2000 में एक टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी स्कैम हुआ था जब मार्केट बड़ी जोर से गिरा था। उस समय भी बुरा लगा कि लोगों के इतने पैसे गंवा दिए। 2008 में भी वैसा ही हुआ था। बट उन सारे मुश्किलियों में, उन सारे करेक्शंस में एक चीज़ ठान के रखी थी कि हमें आगे बढ़ना है। जो भी मुश्किलें आई, जो भी फेलियर मिली, उसमें से कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ते गए, तो आज यहाँ पे पहुँच गए।
जो आप अभी सुन रहे हैं, अगर आपको पसंद आया हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हैं, तो फॉलो बटन और ठीक उसके बगल में बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के युवा आज देश की ग्रोथ में अपनी सहभागिता कैसे दर्ज कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए?
जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी तब भारत का मार्केट कैप कुछ 300 बिलियन डॉलर के आसपास था और जीडीपी भी मोटा मोटा उसके आसपास था। पिछले साल 2021 में भारत का जीडीपी और मार्केट कैप मोटा मोटा 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था। मोटा मोटा जितना जीडीपी बढ़ा उतना मार्केट कैप बढ़ा, तकरीबन 2700 बिलियन डॉलर या 2.7 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ क्रिएट हुई। उसी जर्नी में अंबानी बन गए, अडानी बन गए, टाटा बन गए, बिरला बन गए। आने वाले 8 से 10 सालों के बीच में भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर से 6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। मार्केट कैप भी मोटा मोटा उतना ही बढ़ेगा। हमें जिस जर्नी में पार्टिसिपेट करने में 30 साल लगे वो आज की जनरेशन सिर्फ 6 से 10 साल के अंदर कर लेगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मनी इन टुमारोज इंडिया इज इन ए फास्ट फॉरवर्ड बेसिस। हमने 30 साल के स्लो मोशन में जो जर्नी पसार की उतना अब फास्ट फॉरवर्ड में 6 से 10 सालों के बीच में हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप निवेशक बने। बंदर की तरह अगर एफएनओ में ट्रेडिंग करते रहेंगे तो 9 में से 10 लोग नुकसान करेंगे, लेकिन अगर आप निवेश करेंगे, अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे, लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, तब आप इस जर्नी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मेरे पिताजी तो जब मैं बहुत छोटा था तब गुजर गए थे, बट अगर वो जिंदा होते एंड अगर उन्होंने इक्विटी में निवेश नहीं किया होता तो मैं उनको कंप्लेन कर सकता कि देखो पापा, आपने निवेश नहीं किया तो मुझे आज नौकरी करनी पड़ रही है, मुझे अपने लिए धन उपार्जन करना पड़ रहा है। और मेरे पिताजी शायद मुझे कहते कि देख बेटा, जब मैं इक्विटी में निवेश कर सकता था तब मुझे तो कोई समझाने वाला था नहीं, न टेलीविज़न पे इसकी बातें होती थी, न न्यूज़पेपर में बातें होती थी, न कोई जो स्टॉक जैसा यूट्यूब चैनल था जहाँ पे स्टॉक मार्केट के लिए कैसे निवेश करें कोई समझाए, और मैं शायद अपने पापा को माफ़ कर देता। इमेजिन करिए आज से 10-15 साल बाद आपका बेटा या बेटी आके पूछेगा कि पापा, आपने इक्विटी में निवेश क्यों नहीं किया, माँ, आपने इक्विटी में निवेश क्यों नहीं किया, तब आप क्या जवाब देंगे? तब आप ये कहेंगे कि मैं एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहा था? तब आप ये कहेंगे कि मुझे भारत की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास नहीं था? पिछले 67 सालों में भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 से 2024 के 10 सालों में बन रहा है। 67 = 10, ये इक्वेशन हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। 2013 तक भारत में 82,000 किलोमीटर्स के हाईवे थे, आज तकरीबन 150,000 किलोमीटर के हाईवे है, 2024 तक वो 165,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएंगे। भारत में 70 एयरपोर्ट थे 2013 तक, आज 140 है, नेक्स्ट 2-3 सालों में 200 के ऊपर हो जाएंगे। 21,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक हमने इलेक्ट्रिफाई किए थे 2013 तक, आज 55,000 किलोमीटर के आसपास हो गए हैं। पावर कैपेसिटी देखे तो 225 गीगावाट से 435 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। पोर्ट कैपेसिटी देखे तो 1400 मिलियन टन से 2800 मिलियन टन बन गई है। 67 साल में भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया वो आप 10 साल में देख रहे हैं। यह भारत की जर्नी में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? बेहतर है ट्रेडिंग विच इज़ इंजीरियस टू ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को छोड़े और इन्वेस्टमेंट उसको अपनाएं।
तो दोस्तों, ये थे नीलेश शाह, जिन्होंने हमें ये बताया कि इंडिया की ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए इन्वेस्टिंग कितना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आपको स्टॉक मार्केट की दुनिया में घुसने का नया भरोसा मिला हो। आज के पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने जोश को बनाए रखने के लिए फॉलो बटन और बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आज का एपिसोड सुनकर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शायद अभिजोश की जरूरत हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड ने आपको एक जोश भरा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया होगा। मैं सिद्धांत नाग आपसे फिर मिलूंगा द जोश टॉक्स पॉडकास्ट के अगले एपिसोड पर।